समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello, Akarshita. Hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Akarshita. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
Pradhanmantri Narendra Modi ne Nayi Delhi mein Chile ke Rashtrapati Gabriel Boric Font ke saath dvipakshiya vaata ki. Vibhinn kshetron में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
लोकसभा टू टेक अप वॉफ अमेंडमेंट बिल 2024 फॉर कंसीडरेशन एंड पासिंग टुमारो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों की सराहना की।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेज गवर्नमेंट इज टेकिंग जायंट स्ट्राइड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ नक्सल फ्री भारत, इन्फॉर्म्स मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिड्यूसेस टू 6 फ्रॉम 12।
भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमा के लिए मानवीय सहायता बढ़ाई। C-130J विमान के अलावा भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर रवाना।
एंड इन IPL T20 क्रिकेट लखनऊ सुपर जायंट्स टू फेस पंजाब किंग्स इन लखनऊ दिस इवनिंग। And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Prevention of Blindness Week. Marking the importance of vision care, India observes Prevention of Blindness Week from April 1st to April 7th each year. This week's goal is to raise awareness about the various causes of blindness. The initiative seeks to educate individuals on different types of eye injuries, visual impairments, treatment options, preventive measures, and possible remedies. It is worth pausing for a moment to consider how blindness works, why it happens, and most importantly, how we can stop it. Well, blindness doesn't always announce itself. It is not a dramatic event, but more like a thief who tiptoes into your home over time, taking small things you don't immediately notice. Take cataracts, for example. A cataract is a gradual clouding of the lens inside your eye. In its early stages, it merely blurs vision, making street lights look like exploding fireworks or reducing the vibrancy of colors. It's easy to dismiss as just getting older, but left untreated, cataracts leads to blindness, and in India they account for a staggering 51% of blindness cases.
और अभिषेक, हाल के कुछ वर्षों में भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी दिनचर्या में ऐसा बदलाव आ चुका है कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमारे खान पान और कमजोरी का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है। यही कारण है कि पहले के दौर में जहां बुजुर्गों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज की जनरेशन में बचपन में ही चश्मे की जरूरत होने लगी है। आंखों की रोशनी का कमजोर होना आज के समय में एक गंभीर विषय बन गया है, जिस बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। हमारी आंखें शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं और हमें उनकी अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। मोतियाबिंद, कॉर्निया, अंधापन, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी और रेटिना के जनरेशन जैसे कई कारण अंधेपन का कारण बन सकते हैं।
Yes, and blindness is a personal tragedy, Akarshita, and also an economic one. India alone loses an estimated $5.4 billion annually due to blindness and visual impairment, and the loss of productivity, medical expenses, and dependence dependency on caregivers create an invisible tax that affects entire families and communities. And yet 90% of blindness is preventable or treatable. If the solutions to preventive blindness, like regular checkups, early intervention, protective measures, are so simple, why don't people act sooner? Well, people need to take responsibility by getting their eyes examined regularly. If there's a family history of glaucoma, diabetes or high blood pressure, one should get a checkup without fail.
और अब हम आंकड़ों की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में लगभग 4.95 मिलियन पूर्ण अंधता से पीड़ित तथा लगभग 70 मिलियन दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, जिनमें से नेत्रहीन बच्चों का आंकड़ा 0.24 मिलियन था। वहीं विभिन्न उपलब्ध आंकड़ों व सूचनाओं की माने तो भारत में लगभग 68 लाख लोग दो या कम से कम एक आंख में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, जिनमें से 10 लाख लोग पूरी तरह से अंधता से पीड़ित हैं। कुछ अन्य आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल दृष्टि दोष के जितने मामले आते हैं उनमें से लगभग 73% मामले ऐसे होते हैं जिनका पूरी तरह से इलाज संभव होता है, बशर्ते उनका इलाज तथा समस्या से जुड़ी देखभाल समय से शुरू हो जाए।
Yes, and governments and other organizations are now accelerating their action to prevent blindness. And in the last fiscal year alone, 83.4 million cataract surgeries were performed, surpassing the target of 75 million. And new initiatives like Orbis India's 100 Green Vision Centers aim to make eye care more sustainable and accessible. These are encouraging steps, but for them to work, individuals need to be proactive about the vision. When individual and community engagement come together, we can reduce avoidable blindness and move towards a world free from blindness.
और अभिषेक, अगर बात करें कि ब्लाइंडनेस कैसे हो रहा है और कैसे आज की जनरेशन में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं आंखों को लेकर, तो अगर हम देखा जाए तो स्मोकिंग, धूम्रपान शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यह आपके फेफड़े समेत आंखों की रोशनी के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं तेज धूप में बाहर निकलते वक्त आंखों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना चाहिए, या लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों की रोशनी कम हो सकती है। आजकल हम देखते हैं अभिषेक, जितना भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को जो है ग्लासेस लगे हैं, वो
लैपटॉप, the tablet, and this is I think the main cause of all vision ailments in the country.
Yeah? जी, उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है और आजकल हम शोध भी देखते हैं ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से बच्चों में कैसी कैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो हम बात करते हैं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ल्यूटिन और जस्ता जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आपको अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडे, घी, नट्स, दाल, बीन, संतरे और अन्य खट्टे फलों को शामिल करना चाहिए और आंखों की सुरक्षा के लिए आपको नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी का भी पता चलेगा और आने वाली समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
India's first vertical bridge, the Pamban Rail Bridge, will be inaugurated by Prime Minister Sri Narendra Modi on April 6th. We have more from our Tiruchirappalli correspondent.
The new Pamban Bridge's vertical lift girder span is considered to be an engineering marvel, ensuring safe and efficient rail and marine traffic. The new bridge will enable trains to cross the sea between mainland and Rameshwaram Island in Tamil Nadu in less than 5 minutes, a significant reduction from the previous 25 to 30 minutes. This new bridge replaces over-century-old bridge which ceased operations in 2022. The 2.2-kilometer-long bridge, parallel to the existing bridge, which is more than a century old, was constructed by public sector enterprise Rail Vikas Nigam Limited at an estimated cost of ₹531 crores. The 72.5 meter long lifting span would be lifted for 17 meters above the bridge using four motors for ships or boats pass through. With the four motors, the vertical span would be raised 17 meters within 4 minutes. This would allow a 22 meter vertical space between the Pamban Channel and the lift for big ships to pass under the bridge. The new bridge has been constructed 3 meters above the height of old Pamban Rail Bridge. In a significant event slated for April 6th, Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Rameshwaram, Tamil Nadu to mark the occasion of Ram Navami with prayers at the Reverend Ramnath Swami Temple, and PM will also inaugurate the newly constructed Pamban Bridge. The new bridge, with its vertical lift mechanism, promises great durability and efficiency, aligning with India's push for modernized rail networks. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति और इसकी समृद्ध जैव विविधता और अनूठी परंपराओं के कारण असम की पर्यटन क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे असम से हमारे संवाददाता अमीनुल हक।
With rapid economic growth and substantial investments in tourism infrastructure, Assam is carving a niche as one of India's top travel destinations in recent years. Tourist arrivals in Assam have surged significantly over the past 4 years, with nearly 2.44 crores tourists, including over 60,000 foreign travelers, exploring the state's diverse landscape and cultural heritage. Most of the domestic tourists to Assam come from the states of West Bengal, Maharashtra and Gujarat, while tourists from southern part of India have also started coming to Assam. Kaziranga National Park and the Kamakhya Temple are the most preferred tourist destinations, apart from Thekyahua Bornamgor, Srimanta Sankardev Kalakshatra, Umananda River Island in Kamrup Metro District and the Assam State Zoo. Aminul Hazuddar, Akashvani, Guwahati.
In West Bengal, the state Suklal Karnani Hospital, popularly known as SSKM, is the first government hospital in eastern India to launch robotic surgery, and this will be a major boost for the state's health infrastructure. We have more on this from a correspondent, Sushmita Mondal.
The IPGMER and SSKM Hospital is the first government hospital in eastern India to launch robotic surgery, taking the health infrastructure in the state a step ahead. The state government will spend a cost of ₹6.4 crore for installing the robot. The state health department has already sanctioned the amount to bring this modern technology to further boost healthcare. Robotic surgeries will be carried out at the hospital free of cost. It was a dream of the Chief Minister Mamata Banerjee to introduce robotic surgery in the SSKM hospital, and she had given necessary directives to the hospital authorities in this regard. According to hospital sources, the SSKM is expected to get the machine installed and commissioned by the end of May. The proposed robotic surgical system was equipped with the original technology from the UK and was programmed to perform various surgeries. A UK-based company will provide the hospital with the most advanced robot. If equipped with such a robotic facility, a private hospital would have charged a patient a few lakhs of rupees for carrying out a surgery. But a patient will be able to avail himself of the facility at the SSKM completely free of cost. The facility can be utilized for multidisciplinary procedures. The SSKM has, however, initial plans to use this technology for surgical procedures in fields like general surgery, urology and gynecology before expanding the spectrum further. Some doctors at the hospital have already undergone sensitization program and attended workshops on robotic surgery. Robotic surgeries were performed in some of the private hospitals in the city at a huge cost, but for a government health institution, it's a great achievement. Sushmita Mondal, Akashvani, Kolkata.
देश आज प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये एक अग्रणी पहल है जिसने वन्य जीव संरक्षण के परिदृश्य को बदल दिया है। 1973 में आज ही के दिन भारत सरकार ने देश की घटती बाघ आबादी की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस परियोजना ने बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 दशकों में ये पहल दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक बन गई है। वर्ष 2006 में भारत में जंगली बाघ आबादी केवल 1411 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 3682 हो गई। दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघ भारत में हैं। देश में अब 57 बाघ अभयारण्य हैं, जो लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में फैला है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है, जो प्रोजेक्ट टाइगर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Yes, from Project Tiger, we now move on, and we have now have a story from Goa. And the Sigmo Festival, Goa's grandest spring celebration, took place between March 15th and March 29, 2025, spanning 19 locations across the state. Deeply rooted in Goan culture, this vibrant festival marks the arrival of spring and pays tribute to the region's rich mythology, folklore, and warrior heritage. We have more from a correspondent.
Shigmo, also known as Shigmotsav, is a traditional Hindu festival that historically honored warriors returning home from battle. Over time, it has evolved into a spectacular cultural showcase featuring colorful processions, traditional folk dances, music, and elaborately decorated floats. The festival is often compared to Holi but carries a distinct Goan essence, with communities coming together to celebrate through lively street parades and performances. One of the key attractions of Shigmo is the processions held in different towns across Goa, where performers don traditional costumes and enact scenes from mythology. Folk dances like Fugdi, Ghode Modni, and Romtamel add to the festive atmosphere, accompanied by rhythmic drum beats and energetic celebrations. Both locals and tourists eagerly participate in this visual and cultural extravaganza, making Shigmo a must experience event on Goa's festival calendar.
Shigmo is not just a festival, it's an emotion that brings Goans together. For generations, this vibrant celebration has been a proud showcase of our rich traditions. The sound of traditional instruments like the dhol and the tasha, the energetic movements of the folk dances such as Ghode Modni, Tonyamer, Gof, Morur, Dangar dance, Romtamer, along with the artistic float parades, creates a mesmerizing experience for all those who attend. The tourism department, in collaboration with various Shigmotsav committees, organizes the state-level Shigmo celebrations, ensuring that a festival's grandeur is experienced across different parts of Goa. Shigmo is a perfect example of how Goa's tourism initiatives are embracing regenerative tourism principles. As the first state in Goa to adopt regenerative tourism, Goa is taking the lead in promoting responsible and sustainable tourism practices. By promoting traditional festivals like Shigmo, we are not only preserving cultural practices, but also supporting local artisans, performers, and communities. These celebrations bring together locals and visitors alike, fostering meaningful cultural exchange. Spiritual tourism holds a special place in Goa, drawing visitors seeking peace, reflection, and cultural connection. In the coming days, spiritual tourism in Goa is set to evolve with improved infrastructure at key religious sites, enhanced visitor facilities, and curated experiences that offer deeper insights into Goa's spiritual heritage.
With inputs from Rashmi Narse, this is Mahesh Chopra from Panji for Akashwani.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 साल से अधिक लंबे शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 158 गोल के साथ वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं।
Yes, and in IPL T20 cricket, Lucknow Super Giants will face Punjab Kings at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. The match will begin at 7:30 p.m. Both teams have 2 points, with Lucknow in third place and Punjab in fifth. Lucknow won the last match against Sunrisers Hyderabad by 5 wickets but lost to Delhi Capitals by 1 wicket. Punjab, on the other hand, defeated Gujarat Titans by 11 runs. Mumbai Indians defeated Kolkata Knight Riders by 8 wickets at the Wankhede Stadium in Mumbai last night. Mumbai comfortably chased down the target of 117 in 12.5 overs, reaching 121 runs with a loss of just 2 wickets. And moving on, some news from the business world. Indian domestic indices declined sharply today amid concerns over the upcoming US reciprocal tariffs from tomorrow. BSE Sensex was down 1,390 points at 76,024, and Nifty 50 was down 353 points at 23,165. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading up at 89,330 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 1,550 rupees per kilogram when reports last came in. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember freedom fighter Avanti Bai Lodhi, who participated in the First War of Indian Independence in 1857.
Avanti Bai Lodhi was born on the 16th of August 1831 in Sivni, Madhya Pradesh. She married Prince Vikramaditya Lodhi, the son of Raja Lakshman Singh of Ramgarh. Rani Avanti Bai Lodhi took up the reins of administration of the state in her hands on behalf of her minor son, Amar Singh, following the Raja's ill health. When Raja Vikramaditya Singh died in 1851, the British authorities decided to pass the Ramgarh's administration over to a court of ward in total disregard of the Rani. She strongly resented the British action.
During the First War of Indian Independence, Rani Avanti Bai joined the independence activists by commandeering the Ramgarh troops and confronted the British in Sohagpur. Rani Avanti Bai defeated the British in the battle. Stung by the defeat, the British came back with vengeance and launched an attack on Ramgarh. Avanti Bai resorted to guerrilla warfare to fend off the British army. In the decisive battle in the hilly region of Devharigarh on the 1st of April 1858, the combined forces were defeated by the British. The Rani had to retreat to Ramgarh, where she and her followers were encircled.
While many accounts claim that Avanti Bai took her own life to evade capture when the defeat was imminent, other accounts claim that she died in captivity in August 1858. She is remembered through performances and folklore and continues to inspire people. We salute the great freedom fighter.
We also remember martyr Anand Charan Malik, a shopkeeper in the Dharamtola area of Kolkata, who died on the 1st of April 1930.
Charan Malik, along with other people of the area, was dissatisfied with the new rules of trade implemented by the British administration. They objected to the new rules on the ground that their livelihood will be adversely affected, and hence decided to hold a demonstration. On the 1st of April 1930, the carters, in unison, removed their animals from the carts and left their carts on the roads. The arrival of the police to clear the main roads by force resulted in pitched battles. Soon, the agitating carters were joined by the sympathetic public in a large number. The police resorted to firing on the crowd, killing Anand Charan Malik and six others. We salute the great son of the soil.
We also remember Mata Varyam Singh, who participated in the 11th Non-Violent Shahidi Morcha to Jaito Gurdwara, Gangsar, Nabha, in 1925 against the British order, prohibiting all prayer assemblies in the area. When the Morcha reached Jaito, the British led troops stopped it and arrested a large number of its participants. Varyam Singh was also arrested and tortured to death in Nabha Bir Jail on the 1st of April 1925. We salute the great son of the soil.
On this day, we also remember freedom fighter Rahim Ali Khan, who led independence activists during the First War of Indian Independence in 1857. He was caught by the British in the course of an engagement and sent to the Andaman Islands on the 7th of March 1859 and died in imprisonment on the 1st of April 1859.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस. सभी कुछ बदलता है अपनी रफ्तार से. सिर्फ नदी ही नहीं, पहाड़ भी चूर चूर होकर बहता है नीचे नदी की छाती से लगा हुआ. ये पंक्तियां हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी की। कैलाश वाजपेयी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के लिए कॉलम भी लिखते थे। वे दार्शनिक मिजाज के कवि थे जिन पर भारतीय अद्वैतवाद और बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव लक्षित किया जाता है। उन्होंने कविता के शिल्प में भी परिवर्तन किया था। उनकी कविताओं के अनुवाद कई भाषाओं में हुए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कविताएं प्रस्तुत की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संक्रांत, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का समंदर, सूफीनामा आदि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया।
Marvin Pence Gaye Jr. was passed away on this day in 1984. He was an American singer, songwriter, musician and record producer. He helped shape the sound of Motown in the 1960s, first as an in-house session player and later as a solo artist with a string of successes which earned him the nicknames Prince of Motown and Prince of Soul. Let's listen into his hit track, Let's Get It On.
हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। ये पंक्तियां हैं प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल की। आज उनकी जयंती है। उनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा देश की आजादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए यह संग्रह एक बहुमूल्य दस्तावेज है। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने कवियों में मुखरित किया। कवि केदारनाथ की जनवादी लेखनी पूर्ण रूपेण भारत की सोंधी मिट्टी की देन है, इसीलिए इनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आस्था का स्वर मिलता है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं अपूर्वा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार आदि। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से नवाजा गया है।
John Lincoln Forsaith passed away on this day in 2010. He was an American stage, film, television actor, producer, narrator, drama teacher and philanthropist whose career spanned six decades. He also appeared as a guest on several talk and variety shows and as a panelist on numerous game shows. And also Kildare Robert Eric Dobbs passed away on this day in 2013. He was a Canadian short story and travel writer. Born in Meerut, Uttar Pradesh, India, he was educated in Ireland and later spent 5 years in the Royal Navy during the Second World War. After the war, he worked in the British Colonial Service. Dobbs came to Canada in 1952 and became a teacher editor for Macmillan of Canada, managing editor of Saturday Night and book editor of the Toronto Star Weekly. In 2000, he was awarded the Order of Ontario. In 2013, shortly before his death, at the age of 89, Dobbs received the Order of Canada.
आज 1950 और 60 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री जबीन जलील की जयंती है। वे अपने समय में दर्शकों के बीच काफी प्रसिद्ध रही। करीब दो दशक के अपने करियर के दौरान भले ही जबीन ने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया, उस दौर की चर्चित अभिनेत्री जबीन सिनेमा के क्षेत्र में प्रोड्यूसर के रूप में भी सक्रिय रही। साल 1954 में रिलीज हुई गुजारा जबीन की पहली फिल्म थी। उन्हें पहचान मिली अपनी तीसरी फिल्म नई दिल्ली से, जिसमें उन्होंने नायक किशोर कुमार की बहन निक्की का रोल किया। 1950 के दशक के आखिर में उनकी चार मीनार, फैशन, जीवन साथी, हथकड़ी और रात के राही जैसी फिल्में रिलीज हुई। जबीन जलील अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहीं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के ये गीत।
And Jaswinder Singh Bains, better known by stage name Jazzy B, was also born on this day in 1975. He's an Indo-Canadian singer and songwriter who has also worked in Indian films, mainly Punjabi and Hindi. Let's listen in to a hit track of his.
Life for the ladies, no more time for babies. You want to see what's on crazy?
Jine mera dil lutya,
ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।
आज केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे किंतु बाद में हिंदू संगठनवादी बन गए। वे जीवन के अंतिम समय तक हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी।
Yes, and also Ajit Lakshman Wadekar was born on this day in 1941. He was an Indian international cricketer who played for the Indian national team between 1966 and 1974.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और अभिषेक को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।